SBS हिंदी।
सबसे पहले शाम 5 बजे तक के मुख्य समाचार। आग से देश भर में भीषण तबाही के बीच ऑस्ट्रेलिया ने किया नए साल का स्वागत। भारतीय प्रधानमंत्री ने भी दी भारतीय नागरिकों को नए साल पर शुभकामनाएं। और भारत ने बदला राष्ट्रमंडल खेलों के बहिष्कार का फैसला। और अब समाचार विस्तार से। सिडनी में नए साल के स्वागत के मौके पर विवादों और विरोध के बावजूद आतिशबाजी का कार्यक्रम किया गया। बताया जा रहा है कि इस आयोजन से ऑस्ट्रेलिया भर में आग से जूझ रहे समुदायों की मदद के लिए $2 मिलियन से ज़्यादा की राशि जुटाई गई है। सिडनी हार्बर में इस उत्सव की शुरुआत ही हार्बर ब्रिज पर एक संदेश के साथ हुई, जिसमें कि रेड क्रॉस आपदा राहत कोष में दान देने की अपील की गई थी। यहाँ पर्यटकों ने इस आयोजन के प्रति मिश्रित भावनाएँ व्यक्त की हैं।
It's good to have fireworks. It's kind of a not so easy situation, I understand. But it's a famous thing to have fireworks at midnight in Sydney. So I believe it's a good thing that you still have it.
सिडनी के लॉर्ड मेयर क्लोवर मूर ने बताया कि सिडनी हार्बर पर कल करीब 1 मिलियन लोग थे, लेकिन उन्होंने ये भी माना कि वर्तमान परिस्थितियों में ये आयोजन कराना कठिन था।
People came from around Australia and across the world to see the Sydney New Year's Eve celebrations and they were very successful.
उधर विक्टोरिया पुलिस ने नए साल की पूर्व संध्या पर उत्सव मनाते लोगों के व्यवहार की तारीफ की है। हालांकि पुलिस को हजारों लोगों में से 100 गिरफ्तारियां करनी पड़ी। जिलोंग में एक चाकू घोंपने की घटना सामने आई, जिसके बाद एक महिला को मामूली चोटों के साथ अस्पताल ले जाया गया। मेलबर्न सीबीडी में भी हजारों लोग नए साल के उत्सव मनाने के लिए जमा हुए। बताया जा रहा है कि पिछले साल से भी बड़ी भीड़ थी, लेकिन पुलिस आयुक्त शेन पैटोन ने बताया कि 5 ऐसी घटनाएं भी सामने आई जिनमें कि पटाखों के विस्फोट में कई लोग घायल हुए हैं।
It is extremely disappointing to be seeing fireworks being used irresponsibly by people who don't have permits. I mean, we had fireworks in the city, but that's done by experts. It's under environment where it's structured, where it's safe, and it's all being considered properly. To have people irresponsibly using fireworks out in areas when the state's so dry, it's just not using your brains. It's just not thinking through.
साल नया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हालात फिलहाल चिंताजनक ही बने हुए हैं। विक्टोरिया में 40 जगहों पर आग धधक रही है, 4 लोगों का पता भी नहीं चल पाया है। पूर्वी गिप्सलैंड में हालात इतने ख़राब हैं कि दमकल कर्मियों के शिफ्ट बदलने पर उन्हें हेलीकॉप्टर से लाना और ले जाना पड़ रहा है। प्रीमियर डेनियल एंड्रूज ने कहा कि विक्टोरिया एक विचित्र तरह के हालातों का सामना कर रहा है।
We've got people that are isolated in the middle of the fire. We've got people who have left and can't get back in. We've got fires that are not out, and we have got some very significant weather coming our way on Friday and Saturday. That makes this a long and dangerous and complex fight, a long and dangerous and complex process to support everybody who's been impacted by it.
न्यू साउथ वेल्स में हालात ज़्यादा ख़राब हैं। 100 से भी ज़्यादा जगहों पर आग भड़की हुई है। भीषण आग की वजह से दक्षिणी तटों पर खतरा बना हुआ है। न्यू साउथ वेल्स क्षेत्रीय दमकल सेवा के कमिश्नर शेन फिट्ज़सिमन्स ने कहा कि आग की वजह से 3 लोगों की जान चली गई है और एक शख्स लापता है।
We also have a very real challenge at the moment with a couple of isolated communities where we've got reports of injuries and burn injuries to members of the public. We haven't been able to get access via roads or via aircraft. It's been socked in or too dangerous and we simply can't access, nor can the people in these areas get out.
ग्रीन पार्टी ने एक आग के हालातों और जलवायु संकट पर आपातकालीन शिखर सम्मेलन और रॉयल कमीशन की मांग की है। हालांकि नेता विपक्ष एंथनी एल्बनीजी ने ग्रीन्स के सुझाव का समर्थन नहीं किया है। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि प्रधानमंत्री को काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट्स को जल्द से जल्द बुलाना चाहिए।
A royal commission takes months to establish. It can't be established very quickly. I'm sure that the premiers and chief ministers would be available immediately for to ensure that coordination. What we need is a response right now.
हालांकि प्रधानमंत्री मॉरिसन इस मांग को पहले ही नकार चुके हैं। उनका कहना है कि COAG को समय से पहले बुलाने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि आग को लेकर दैनिक तौर पर फैसले लिए जा रहे हैं। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या तस्मानिया के पूर्व में लगी आग को जानबूझकर लगाया गया था। इस द्वीप के फिंगल इलाके में आग से बहुत नुकसान हुआ है। प्रशासन को इस आग को जानबूझकर लगाए जाने का शक है। आपको बता दें कि मंगलवार को होबार्ट के उत्तरी इलाके पेलहम में एक घर और दूसरी कई संपत्तियां आग में जलकर नष्ट हो गई थीं। ईरान ने मंगलवार के रोज़ इराक में अमेरिकी दूतावास पर हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन में शामिल होने से इनकार किया है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार के हमले के लिए तेहरान को ज़िम्मेदार ठहराया है। खबर है कि प्रदर्शनकारी इराक और सीरिया में अमेरिका के हवाई हमले का विरोध कर रहे थे। इन हमलों में एक अमेरिकी नागरिक की भी मौत हो गई थी। ट्विटर में राष्ट्रपति ट्रंप ने लिखा कि किसी भी जिंदगी के नुकसान की कीमत ईरान को चुकानी होगी। और अब खबरें भारत से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए वर्ष के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट के जरिए बधाई दी। उन्होंने लिखा, 2020 आपके लिए अद्भुत रहे, यह वर्ष आनंद और समृद्धि से भरा हो, सभी स्वस्थ रहें और सभी की आकांक्षाएं पूरी हों। आप सभी को साल 2020 की हार्दिक शुभकामनाएँ। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके भगवा पहनने पर दिया गया बयान तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने कहा था कि भगवा योगी का नहीं है, भगवा करुणा का प्रतीक होता है और उन्हें भगवा के धर्म को यानी करुणा को धारण करना चाहिए। इस पर योगी आदित्यनाथ के ऑफिस के ट्विटर हैंडल से एक के बाद एक कई ट्वीट किए गए कि योगी जी ने त्याग और साधना के लिए भगवा का धारण किया है। साथ ही ये भी चेतावनी दी गई कि उनकी साधना में जो विघ्न डालेगा उसे दंडित होना पड़ेगा। इस पर अब कांग्रेसी नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि योगी सन्यासी नहीं हैं, वो कुर्सी से चिपके हुए हैं और जातिवाद फैला रहे हैं।
संसार का त्याग नहीं, कुर्सी से चिपक गए हैं। यहाँ तो त्याग नहीं दिखाई देता, यहाँ तो उत्तर प्रदेश में जातिवाद दिखाई दे रहा है सारे पदों पे। योगी आदित्यनाथ पहले अजय बिष्ट ठाकुर साहब पूरा वहाँ जातिवाद फैला के रखे हैं और हिंसा का प्रयोग, साधु संत हैं वो शांति के मार्ग से चलते हैं, वो हिंसा का मार्ग अपना।
वहीं कांग्रेसी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि योगी खुद को सन्यासी कहते हैं, त्यागी कहते हैं, तो उनके लिए सब समान होने चाहिए, फिर क्यों वो दूसरे धर्मों के लोगों से या दूसरे दलित जातियों से नफरत करते हैं, क्यों उनके राज में लिंचिंग हो रही है।
He is a swami, he said he is a tyagi, then he should be being a sant, he should be treat everybody equal. Why he is hating Muslims? Why he is hating minorities? Why he is Dalits? And why lynching is there in his state? Why rapes are increased in his state?
भारतीय सेना के नए सेनाध्यक्ष जनरल मुकुंद नरवणे ने कहा कि धारा 370 हटने के बाद अब जम्मू और कश्मीर सहित पूरे क्षेत्र में शांति है। साथ ही आतंकी वारदातों में बहुत गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों और उस पूरे क्षेत्र के लिए एक कदम आगे बढ़ना जैसा है।
The incidents of violence, whether by the local population or the incidents of terrorist-initiated incidents, both have seen a marked decline. And this augurs very well for the population of JNK. And it is one of the steps forward towards bringing in peace and prosperity.
IIT कानपुर जांच करेगा कि क्या उर्दू के महान शायर फैज़ अहमद फैज़ का मशहूर तराना लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन कि जिसका वादा है हिंदू विरोधी है। जामिया कैंपस में पुलिस कार्रवाई के बाद छात्रों से एकजुटता जाहिर करने के लिए IIT कानपुर के छात्रों ने कैंपस में एक जुलूस निकाला था जिसमें उन्होंने फैज़ का यह तराना गाया था। जामिया के छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर देश भर में छात्रों की तीखी प्रतिक्रियाएं आई थीं। इसके खिलाफ IIT से जुड़े दो लोगों ने शिकायत की जिस पर जाँच बिठा दी गई है। जाँच के तीन विषय हैं, पहला दफ़ा 144 तोड़कर जुलूस निकालना, दूसरा सोशल मीडिया पर छात्रों की पोस्ट और तीसरा ये कि क्या फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म हिंदू विरोधी है। और अब डॉलर का हाल। आज यानी 2020 के पहले दिन यह खबर लिखे जाने तक भारतीय रुपयों में एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमत 50.14 रुपये थी, जबकि अमेरिकी डॉलर की तुलना में एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमत 70 सेंट्स थी। और अब खबरें खेल के मैदान से। भारत ने निशानेबाजी प्रतियोगिता पर हुए विवाद के बाद 2022 कॉमनवेल्थ खेलों के बहिष्कार का अपना फैसला बदल दिया है। दरअसल निशानेबाजी को बर्मिंघम में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों से निकाल दिया गया था, जिसके बाद भारत की ओर से इन खेलों का बहिष्कार करने की चेतावनी दी गई थी। आपको बता दें कि साल 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में निशानेबाजी में भारत ने 16 पदक हासिल किए थे। पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2019 का समापन दुबई ग्लोब सॉकर अवार्ड में बेस्ट मैन प्लेयर अवार्ड के साथ किया। रोनाल्डो को इस साल बालोन डी ओर पुरस्कार नहीं मिल सका, वो लियोनल मेसी से पीछे रहे। मेसी ने यह पुरस्कार रिकॉर्ड 6ठी बार जीता है। 34 साल के रोनाल्डो ने यह पुरस्कार पाने के बाद ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि ग्लोब सॉकर अवार्ड एक से अधिक बार पाकर मैं खुश हूँ, ये मेरे लिए काफ़ी भावनात्मक पल हैं और मैं ये पुरस्कार अपने परिवार के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आपके आतिथ्य के लिए धन्यवाद दुबई, फिर जल्द मिलेंगे। और अब डालते हैं नज़र कल यानी गुरुवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर। पर्थ में कल देर शाम बारिश की संभावना है, अधिकतम तापमान 26 डिग्री न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। एडिलेड में धूप रहने की संभावना है, अधिकतम तापमान 34 डिग्री न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। मेलबर्न में भी धूप की संभावना है, अधिकतम तापमान 26 डिग्री न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। देश की राजधानी कैनबरा में भी ज़्यादातर धूप रह सकती है, अधिकतम तापमान 35 डिग्री न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। सिडनी में बादल छाए रहने की संभावना है, अधिकतम तापमान 25 डिग्री न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। ब्रिस्बेन में बादल छटने के बाद धूप की संभावना है, अधिकतम तापमान 31 डिग्री न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। डार्विन में आंधी और बारिश की संभावना है, अधिकतम तापमान 34 डिग्री न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। भारत की राजधानी नई दिल्ली में सुबह के कोहरे के बाद धूप की संभावना है, दिल्ली का अधिकतम तापमान 18 डिग्री न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। खबरों में आज इतना ही।
आपके विचार हमें बताएं। SBS हिंदी को फेसबुक पर लाइक करें और @SBS हिंदी को ट्विटर पर फॉलो करें।